आज है सितंबर महीने की 13 तारीख दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। लंदन में विजय माल्या ने किया दावा, भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से की थी मुलाकात।
I left because I had a scheduled meeting in Geneva. I met the finance minister before I left. Repeated my offer to settle with the banks.
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कहा, ज्यादा गन्ना ना लगाएं किसान, बढ़ जाती है शुगर।
गन्ना के अलावा कुछ और फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी। आप इतना गन्ना लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो रहा है।
30 साल पुराने रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा पर सुप्रीम कोर्ट करेगा दोबारा विचार, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारतीय बैंकों से करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बड़ा दावा किया है। माल्या ने कहा है कि साल 2016 में भारत छोड़ने से पहले वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। हालांकि वित्त मंत्री ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि माल्या के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन चले गए थे और तभी से लंदन में रह रहे हैं। भारत सरकार ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूर्व रूसी जासूस सर्जेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को नर्व एजेंट देने के संदिग्ध आरोपी कोई अपराधी नहीं है, बल्कि वे आम नागरिक हैं। ब्रिटेन की सरकार ने अलेक्जेंडर पेट्रोव और रसलन बोसिरोव को नर्व एजेंट देने का आरोपी बताया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि ये दोनों व्यक्ति रूस की सेना के खुफिया विभाग से थे। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों शख्स बहुत जल्दी लोगों के सामने आएंगे और उन्हें अपनी कहानी बताएंगे। पुतिन ने कहा, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये कौन लोग हैं। हमने उन्हें तलाश लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वे सामने आएंगे और हर किसी को अपने बारे में बताएंगे। ना तो इसमें कुछ बहुत खास है और ना ही आपराधिक है। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। जब लोगों ने पुतिन से पूछा कि क्या वे सामान्य नागरिक हैं, तो पुतिन ने कहा, जी हाँ, वे आम नागरिक ही हैं। चिली की संसद ने एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत 14 साल की उम्र का कोई भी शख्स अपने माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक की भी सहमति से अपना नाम और लिंग बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक का है तो माता या पिता की सहमति की भी जरूरत नहीं है। यह कानून पिछले कई सालों से ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रदर्शन का परिणाम है। हालांकि इस नए जेंडर आइडेंटिटी बिल को लेकर रोमन कैथोलिक चर्च ने नाराजगी जताई है। अलेसिया एक ट्रांसजेंडर है और चिली में रहती हैं। इस नए कानून पर अपनी राय देते हुए कहती हैं कि इससे हमारे जैसे लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अलेसिया कहती हैं, यह कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी सकें। नाबालिगों के लिए नाबालिगों के माता पिता भी अब उनका साथ दे सकते हैं ताकि उनका बच्चा एक बेहतर माहौल में बड़ा हो। ये थे अलेसिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका की सरकार हिंदू मंदिरों में पशु पक्षियों की बलि पर रोक लगा रही है। सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि हिंदू धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव आगे बढ़ाया था और अधिकतर उदारवादी समूहों ने इसका समर्थन किया है। माना जा रहा है कि बलि पर रोक संबंधी कानून के दायरे में मुसलमान नहीं होंगे, जो देश की आबादी का तीसरा बड़ा हिस्सा है। एक रिपोर्ट के लीक होने से पता चला है कि जर्मनी में 3,500 से ज़्यादा बच्चों का रोमन कैथोलिक चर्च के पादरियों ने यौन शोषण किया। ये आंकड़े साल 1946 से 2014 के बीच के हैं। ये रिपोर्ट खुद चर्च द्वारा ही तैयार की गई थी और इसे 25 सितंबर को प्रकाशित किया जाना था। एक चर्च के प्रवक्ता ने कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक और शर्मिंदगी भरा है। पीड़ितों में ज्यादातर लड़के ही थे और उनमें से भी ज्यादातर या तो 13 साल के थे या उससे भी कम उम्र के। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों के लगभग 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या ने दावा किया है कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी और बैंकों के साथ सेटलमेंट की पेशकश भी की थी। विजय माल्या के इस दावे के बाद वित्त मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, हालांकि उन्होंने विजय माल्या के दावे को खारिज कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता नवीन नेगी।
शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए के बकायेदार विजय माल्या ने कल एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ने से पहले वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। वेस्टमिंस्टर कोर्ट परिसर में माल्या जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि वे संसद परिसर में माल्या से मिले थे। पहले सुनिए माल्या ने अपने बयान में क्या कहा।
I met the finance minister before I left, repeated my offer to settle with the banks. That's the truth.
माल्या कह रहे थे कि वे भारत से जेनेवा एक मीटिंग के लिए जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और उनके सामने अपने बकाए के सेटलमेंट की बात रखी। विजय माल्या का यह बयान सामने आते ही अरुण जेटली सवालों के घेरे में आ गए। हालांकि कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री ने भी अपना पक्ष साफ किया और कहा,
I see the statement of Vijay Mallya where he claims to have met me with an offer of settlement. Nothing could be further than from truth. I have never given him an appointment.
अरुण जेटली ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह सच को नहीं दर्शाता। 2014 से मैंने कभी उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया है, ऐसे में मुझसे मिलने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और कभी कभी सदन में भी आया करते थे, ऐसे में उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए मेरी ओर आए और चलते हुए कहा कि मैं कर्ज चुकता करने का एक ऑफर दे रहा हूं। उनके पहले भी दिए गए इस तरह के झांसे से मैं अवगत था, इसलिए मैंने आगे किसी भी बात को करने से इनकार करते हुए उनसे कहा कि मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आपको बैंक को ऑफर देना चाहिए। मैंने उनके हाथ में पकड़े कागज को लेने से भी इनकार कर दिया। उन्हें मीटिंग के लिए मुलाकात का वक्त देने का सवाल ही नहीं उठता। ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। माल्या लंदन के एक कोर्ट में प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए आए थे। भारतीय एजेंसियों ने माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मौजूद BBC संवाददाता गगन सबरवाल ने बताया कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान विजय माल्या बहुत ही तनाव में दिख रहे थे।
आज मैंने एक काफी सीरियस स्ट्रेस और टेंस विजय माल्या को कोर्ट में देखा। और जहाँ पे हम जर्नलिस्ट बैठे हैं ना, उनको पब्लिक गैलरी बोलते हैं, वहाँ पे पब्लिक के भी लोग आते हैं। तो विजय माल्या की फैमिली भी वहाँ पे थी, उनकी जो गर्लफ्रेंड है पिंकी लालवानी एंड विजय माल्या की पर्सनल असिस्टेंट भी थी, और उनकी भी वो मेरे सामने बैठे थे और उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका बिहेवियर भी बहुत टेंस लग रहा था।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि विजय माल्या ने लंदन में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश देने चाहिए और जांच होने तक अरुण जेटली को वित्त मंत्री के पद से हट जाना चाहिए। इसके जवाब में BJP की तरफ से पीयूष गोयल ने कहा कि ये सारे कर्ज कांग्रेस के कार्यकाल में दिए गए थे।
ये केसेस कांग्रेस के जमाने के दिए गए लोन्स हैं, ये फ्रॉड्स उस जमाने में किए गए फ्रॉड्स हैं। मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने ईमानदार व्यवस्था को इस देश में लागू किया और ये बड़े लोगों को मजबूर किया है कि आज उनको अपने कानून के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं।
इस बीच लंदन स्थित कोर्ट ने कहा है कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर वह 10 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर माल्या चाहेंगे तो इस तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से गन्ने के अलावा अन्य फसलें बोने की अपील की है। साथ में ये भी कहा है कि किसानों के ज़्यादा गन्ना लगाने की वजह से लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में दिया है। ये वो इलाका है जहां गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है। गन्ना किसानों ने इस बयान पर न सिर्फ हैरानी जताई है बल्कि आलोचना भी की है। सुनिए समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में गन्ना यूं तो पूरे राज्य में होता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी मिलों का मुद्दा न सिर्फ किसानों की आजीविका से जुड़ा है बल्कि यह राजनीतिक हवा का रुख भी तय करता है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके बागपत में मुख्यमंत्री ने जब गन्ना किसानों से गन्ना छोड़ अन्य फसलों की ओर रुख करने का आह्वान किया तो गन्ना किसान हैरान रह गए। योगी ने इसकी वजह भी बताई।
गन्ना के अलावा कुछ अन्य फसलों को भी बोने की आदत डालनी पड़ेगी। आप इतना गन्ना लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जा रहा है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि दिल्ली का बाजार आपके लिए इतना अच्छा है, अगर सब्जी की खेती आप करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आप कार्य कर सकते।
जानकारों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक बनावट है उसमें गन्ने की फसल आसानी से होती है, इसलिए यहां गन्ना बोना किसानों की विवशता भी है। दूसरे, चीनी मिलों की अधिकता के कारण उन्हें अपने गन्ने का बाजार भी आसानी से मिल जाता है। किसान नेता और गन्ना किसानों के लिए आंदोलन को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सरदार वीएम सिंह कहते हैं,
गन्ना उन इलाकों में होता है जहां पर बाढ़ हो, जहां पानी ज्यादा आए, जहां धान नहीं लग सकता, वहां सब्जी तो लग नहीं सकती। तो गन्ना एक मजबूरी है, एक हार्ड क्रॉप है। गन्ने का सब्स्टिट्यूट केवल केला हो सकता है, तो बहुत महंगा है, लगाना बड़ा मुश्किल है, और कोई सब्स्टिट्यूट गन्ने का है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा अजीब सा इनका स्टेटमेंट है। अगर ये नुकसानदायक है, अगर ये जहर है, तो योगी जी आपने अपने गोरखपुर मंडल में मंडरवा चीनी मिल और पपरा चीनी मिल को चालू करने की क्यों बात करी है भाई? सबसे अजीब बात यह है, हमारे गन्ने के अंदर चीनी जो है वो शुगर पैदा करती है, जो पाकिस्तान से आप मंगाते हो, क्या शुगर फ्री है?
राज्य में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच पैसे के भुगतान को लेकर अक्सर विवाद होता है। चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया रहता है और किसानों के लिए उसका भुगतान ही सबसे बड़ी समस्या होती है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद वो किसानों के सारे बकाये का भुगतान कर देगी। कल बागपत में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वीएम सिंह कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है।
पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 14 दिन में आपकी पेमेंट करेंगे वरना ब्याज देंगे, नहीं कर पाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि ब्याज देने के लिए 4 महीने के डिसीजन लेने के लिए आज 14 महीने हो गए, हाईकोर्ट का डिसीजन मान नहीं रहे आप।
उत्तर प्रदेश में करीब 50 लाख गन्ना किसान हैं और ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। पिछले दिनों सहारनपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में गन्ना सीधे तौर पर चुनावी मुद्दा बना था और चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। जानकारों का कहना है कि गन्ना आगे भी चुनावी मुद्दा रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की गन्ने के अलावा अन्य फसलें बोने की सलाह किसान कितना मानते हैं ये देखने वाली बात होगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। 30 साल पहले हुए पटियाला के रोड रेज मामले में पंजाब के मंत्री और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लगा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन।
पटियाला रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर एक याचिका पर फिर से सुनवाई का फैसला लिया है। 30 साल से भी पुराने इस मामले के दोबारा खुलने से पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सिद्धू को जेल की सजा दी जाए या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यहां बताते चलें कि 1988 में पटियाला में एक कार पार्किंग को लेकर पटियाला वासी 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ सिद्धू का विवाद हो गया था और आरोप था कि आपसी तकरार के बाद हाथापाई हो गई थी और बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू और उनके साथी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की कैद और 1,00,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि इसी वर्ष मई माह में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिद्धू को मारपीट का दोषी तो करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महज 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर सिद्धू को बरी कर दिया था। और इसके साथ ही साथ सिद्धू को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सिद्धू को दी गई 3 साल की कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में सिद्धू की सजा को लेकर दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और याचिका दर्ज करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार से सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में जब गुरनाम सिंह के परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। सिद्धू पिछले दिनों अपनी पाकिस्तान फेरी के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे थे और भाजपा के झंडे तले तीन बार सांसद बनने के बाद वो कांग्रेस में चले गए थे और इस वक्त वो पंजाब में पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन अमृतसर से।
और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। भूमिका बताएं अखबारों में क्या छपा है आज।
जी संदीप, सबसे बड़ी खबर तो विजय माल्या की ही है, जैसा आपने भी उसमें जिक्र कर चुके, हम पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुके, लेकिन अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइंस के साथ उस खबर को, अब कुछ बड़ी रोचक सी भी हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी, देश छोड़ने से पहले माल्या की जेटली से मुलाकात पर हंगामा, ये एनबीटी ने इस हेडलाइंस के साथ,
नवभारत टाइम्स,
जी नवभारत टाइम्स, और दैनिक हिंदुस्तान लिखता है विजय माल्या सरासर झूठ बोल रहे हैं,
जैसा कि दावा
वित्त मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी बाकायदा और उससे उन्होंने बताया कि वो झूठ बोल रहे हैं। और देश छोड़ने से पहले सेटलमेंट के लिए मिला, ये दैनिक भास्कर ने लगाई है हेडलाइन। और ये विजय माल्या जो कि 9,000 करोड़ रुपये भारतीय बैंकों से लेकर फिलहाल ब्रिटेन में हैं और अभी इस पे सारा मामला चल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने ये छापी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, यानी आरएसएस जो है, उसकी एक बहुत बड़ी टीम राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं के दफ्तर जा सकती है, क्योंकि अगले सप्ताह आरएसएस का एक 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, होने वाला है, इसे लेक्चर सीरीज नाम दिया गया है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इस लेक्चर सीरीज के लिए 60 देशों को निमंत्रण दिया गया है और इन 60 देशों में लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। और इसमें आरएसएस किन विचारों पर काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इस बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो ख़ास बात यह है कि विपक्ष समेत राहुल गांधी के दफ्तर भी जाने की बात की जा रही है। और कोची में नन के साथ कथित रेप के मामले में पुलिस ने बिशप फ्रैंको को सम्मन भेज दिया है और उन्हें 19 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा है।
केरल का मामला
जी, बिल्कुल, ये केरल का मामला है। और एक बहुत ज़रूरी खबर ये है कि दुनिया में आत्महत्या करने वाली हर 10 औरत में से 4 औरतें भारत की होती हैं, ये एक चिंता की बात है।
बहुत शुक्रिया भूमिका अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए। और अब बात यूरोप के उस देश की जहां आम चुनाव में किसी एक दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं स्वीडन की, जिसे उदारवादी और खुलेपन का हामी तो माना जाता है, लेकिन अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं दुनिया जहान में। वात्सल्य राय की प्रस्तुति सुने
दुनिया जहान। म्यूजिकल बैंड एबा की लोकप्रिय धुनें अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार, डायनामाइट, बोफोर्स या फिर कंप्यूटर माउस। यूरोपीय देश स्वीडन को लेकर आपके जहन में जो भी पहचान मजबूत हो, वहां के लोग तो अरसे से अपने समाज के खुलेपन, लैंगिक समानता और राजनीति के उदार चरित्र पर ही इतराते रहे हैं। जहां सरकारें लोगों की जिंदगी में झांकती नहीं, बल्कि समाज कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं और पारदर्शिता तय करने में जुटी दिखती हैं। हथियार निर्यात करने के मामले में आला देशों की कतार में होने के बाद भी स्वीडन ने साल 1814 के बाद से कोई जंग नहीं लड़ी है। नई खोज और नई तकनीक को बढ़ावा देने का हामी ये देश अति विकसित पश्चिमी देशों के लिए भी दशकों तक मॉडल रहा है। साल 1963 की एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में स्वीडन का बखान कुछ इस तरह से किया गया था।
स्वीडन के लोग दुनिया में सबसे अमीर हैं। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सरकार समाज कल्याण पर ध्यान देती है। इसने गरीबी को खत्म कर दिया है। यहाँ हड़तालें नहीं होती, यहाँ हर चीज और हर कोई काम करता है। ये दुनिया का इकलौता देश है जहाँ 7 साल के बच्चे को सेक्स का सबक दिया जाता है।
पैमाना खुशी का हो या संपन्नता का, स्वीडन की गिनती बरसों से आला 10 देशों में होती है। युवा हो या फिर बुजुर्ग, रहने के लिहाज से हर उम्र के लोगों के लिए इसे अव्वल मुल्क माना जाता रहा है। लेकिन स्वीडन की ये पहचान अब बदल रही है। दक्षिणी शहर मोलमो में रहने वाली एक महिला को सुनिए।
We have been so lucky here. Now I think we have started to see...
हम बहुत खुशकिस्मत थे, लेकिन हम अब समाज में दिक्कतें देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसका संबंध प्रवासियों से हो। अब लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे का स्कूल ठीक नहीं चल रहा है, मेरे बुजुर्ग माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, बसें और ट्रेनें हमेशा देर से चल रही हैं। तो लोगों को लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो पहले मिलती थीं।
देश की राजनीतिक तस्वीर भी बदल रही है। स्वीडन को उदारवादी पहचान देने वाली सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का दबदबा लगातार घट रहा है। 7 दशकों यानी साल 2006 तक इस पार्टी की जड़ें मजबूती से जमी रहीं। हाल में हुए आम चुनाव में ये पार्टी जिस गठबंधन में है वो मुकाबले के दूसरे गठबंधनों से कुछ ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सका। स्वीडन गठबंधन सरकारों का अभ्यस्त होने लगा है, लेकिन इस बार बड़ा अंतर प्रवासियों का मुखर विरोध करने वाली पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स को मिले वोट हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भास्मती सरकार कहती हैं कि स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के 18% वोट हासिल करने को चौंकाने वाला नतीजा नहीं कहा जा सकता है।
ये लास्ट ईयर का एक सर्वे हुआ था, तो तब भी ये अंदाजा था कि ये लोग इनका बढ़ावा होगा, क्योंकि 2015 का जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उसके तहत वहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हुए थे, जब इकट्ठे बहुत सारे लोग आ गए थे, तब से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
साल 2015 के प्रवासी संकट के वक्त स्वीडन ने बहुत उदार रुख दिखाया था। 163,000 लोगों ने स्वीडन में शरण पाने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन ने जनसंख्या के अनुपात में यूरोप के किसी भी मुल्क के मुकाबले ज्यादा प्रवासियों को जगह दी थी। करीब 1 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 10% से ज्यादा प्रवासी हैं। प्रोफेसर सरकार को सुनिए।
2015 में जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस दौरान आप देखेंगे स्वीडन पहले जो स्वीडिश गवर्नमेंट थे वो बहुत एक जर्मनी के जैसे स्टांस लिया था, बहुत वेलकमिंग स्टांस था, बट एकाएक जब बहुत सारे लोग आए थे तो इनका जो व्यवस्था था इनको जगह देने का, रहने का व्यवस्था करना है, ये इनका क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो ये रहने का जगह देना, उनको कहाँ रहना है कहाँ रखना है, वो सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो गया था एकाएक।
राजनीतिक विश्लेषक स्वीडन की राष्ट्रवादी पार्टी के उभार को इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टियों के प्रभाव में इजाफे से जोड़कर देखते हैं। इटली में 5-स्टार मूवमेंट ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। जर्मनी में ADF पार्टी पहली बार संसद में पहुंचने में कामयाब रही। ऑस्ट्रिया में फ्रीडम पार्टी सरकार में शरीक है और फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मरी लापेन ने चुनौती पेश की थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि ये बदलाव पहचान के संकट से जुड़ा है।
जो भी हुआ 2015 के माइग्रेशन क्राइसिस में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, उसने कहीं पर यूरोपियन आइडेंटिटी को झकझोर के रख दिया है। वो ये सवाल उसने खड़े करे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो यूरोप की अपनी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी। ये सवाल जो ब्रिटेन ने तो उठाए ब्रेक्सिट में, लेकिन आप देखें तो ये जो स्वीडिश की पॉलिटिकल पार्टीज है ये भी अपना ब्रेक्सिट चाहते हैं, स्वीस ब्रेक्सिट।
इस बार आम चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 6% ज्यादा वोट हासिल करने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यिमी ओकासन का दावा है कि उनकी पार्टी में नस्ल भेद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। स्वीडन में हर 6 में से 1 व्यक्ति का वोट हासिल करने वाली ये पार्टी अपनी पहचान बदलने में जुटी है। महिलाओं और ऊंचे तबके को साथ लाना इसकी प्राथमिकता में शुमार हो गया है, लेकिन अब भी इसकी पहचान प्रवासियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने को लेकर है। ये पार्टी यूरोपीय यूनियन से अलग होने की मांग उठाती है और जनमत संग्रह कराना चाहती है। हर्ष पंत का आकलन है कि यूरोप की बाकी दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह ही ये पार्टी भी पहचान के संकट को उठाकर अपना आधार बढ़ाना चाहती है।
इसमें सर्टेनली एक एंटी इस्लामिक फ्लेवर भी है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं पर एंटी इस्लाम रही हैं और एंटी इस्लाम इनकी पॉलिसी रही है, तो फंडामेंटली एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन मुझे नजर आता है। और सारी कंट्रीज में जो अभी तक ये कहते थे कि यूरोपियन यूनियन ने हमारी आइडेंटिटी को सब्स्यूम कर लिया है, वो अब इस बात से ज्यादा डर गए हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
स्वीडन की अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन इस देश के लिए पहचान का मुद्दा अहम है। यूरोपीय यूनियन में होने के बाद भी स्वीडन ने एकल मुद्रा यूरो को मंजूर नहीं किया है। स्वीडन के कई लोग आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याण सेवाओं में कटौती को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते अपराध भी फिक्र की वजह है। दक्षिणी शहर मोलमो को यूरोप में बलात्कार की राजधानी कहा जाने लगा है। कई लोग बढ़ते अपराधों के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते। हालांकि हर्ष पंत कहते हैं कि आंकड़े आगे करके लोगों की सोच को नहीं बदला जा सकता है।
आंकड़े अगर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो परसेप्शन है, जो एक डिस्कोर्स है, जो एक नैरेटिव है, वो ये बन गया है कि जब आपकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी को आप ब्लेम करते हैं। इसमें माइग्रेंट्स आपके पास एक आसान सा टारगेट है, उसको ब्लेम किया जाता है कि देखिए क्राइम बढ़ रहा है तो क्योंकि इमिग्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, इससे बढ़ रहा है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्राइम हो सकता है ज्यादातर स्वीडिश नेशनल्स जो कर रहे हों।
हर्षपंत ये भी कहते हैं कि प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर गुमान करने वाले स्वीडन में जो बदलाव दिख रहे हैं वो मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की खामियों की ओर इशारा करते हैं। तो क्या स्वीडन की उदार प्रगतिशील और खुशनुमा देश की पहचान खतरे में है? इस सवाल पर प्रोफेसर सरकार कहती हैं,
एक चीज जो आपको और शायद देखना चाहिए वो है कि वहाँ पे काफी रोबस्ट सिविल सोसाइटी है और कई एनजीओ है जो काम करते हैं, सिर्फ स्वीडन में नहीं है, नॉर्वे में भी है, जो लोग बहुत मदद करते हैं सारे रेफ्यूजीज के। तो इनकी अपनी एक पहचान रही है, वो पहचान इतनी जल्दी मिट के एकदम नए सिरे से हो जाएगा ऐसे मुझे नहीं लगता है।
स्वीडन भी अपनी उस पहचान को बचाना चाहता है जिसके जरिए मिली बहुआयामी कामयाबी को देखने दशकों से पूरी दुनिया यहाँ आती रही है।
ये थी दुनिया जहान में वात्सल्य राय की प्रस्तुति। ढाका में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ कप के सेमीफाइनल में भारत ने अपने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया है। भारत के लिए पहले दो गोल मानवीर सिंह ने किए, तीसरा गोल सुमित पासी ने किया। मुकाबला खत्म होने से कुछ देर पहले पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिर्फ एक गोल कर पाया। खेल जगत की बाकी खबरें सुमिरनप्रीत कौर से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेशक भारत को इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में 4-1 से हरा दिया, लेकिन फिर भी टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के पहले स्थान पर जमी हुई है। अभी कुछ समय के लिए टीम इंडिया की इस रैंकिंग को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में टीम इंडिया को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर में पहले क्रिकेट श्रृंखला होगी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 टेस्ट मैचेस और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मुकाबले होंगे। आने वाले इन मुकाबलों के बारे में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली का कहना है,
अगली बार जो भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पहली इनिंग में ही हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से खेलें ताकि कभी हम कैचअप ना कर रहे हो सीरीज में, क्योंकि एक बार डिफिकल्ट कंडीशंस में आप पीछे लगते हैं तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये रहेगी कि पहले सीरीज में जब भी हम अब खेलेंगे तो पहली इनिंग में वो इम्पैक्ट बनाए एज बैट्समैन और फिर उस पर बिल्ड ऑन करें, क्योंकि वैसे ही आप एक लंबी सीरीज में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सीरीज के शुरुआत में अगर हम ज्यादा और खुल के खेल सकेंगे तो एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि आपने पॉजिटिव खेलना है और उसको ऑपोजिशन को भी एक मैसेज जाता है कि ये लोग फियरलेस होकर खेलना चाह रहे हैं।
अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने 4 सप्ताह के नेशनल कप के लिए बुधवार को 25 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया। इन खिलाड़ियों में पूर्व कप्तान सरदार सिंह का नाम शामिल नहीं है। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और इसी के साथ भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को नर्व एजेंट देने के संदिग्ध आरोपी कोई अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे आम नागरिक हैं। श्रीलंका की सरकार हिंदू मंदिरों में पशु पक्षियों की बलि पर रोक लगा रही है। एक रिपोर्ट के लीक होने से पता चला है कि जर्मनी में 3,500 से ज़्यादा बच्चों का रोमन कैथोलिक चर्च के पादरियों ने यौन शोषण किया। चीन के दक्षिणी हुनान प्रांत के हेंगयांग शहर के व्यस्त चौराहे पर एक व्यक्ति ने अपनी कार से कई लोगों को कुचल दिया है। इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 43 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप करने वाले विदेशी लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश जारी किया है।
बीबीसी समाचार सुन रहे थे आप भूमिका राय से। नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण दिन भर समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार 7:30 PM। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।